दुनिया की कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, अंत में जीव को शांति या परम सुख पाने के लिए तो अंतर्मुख होना ही पड़ेगा, किसी फकीर की शरण जाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पूरा का पूरा हाल किसी दूसरे साथी को बता दे। पत्नी होगी तो कुछ न कुछ पति से छुपा कर रखेगी, पति होगा तो कुछ न कुछ पत्नी से छुपा कर रखेगा, चाहे फिर बैंक बैलेंस हो चाहे और किसी की दोस्ती की बात। भाई भाई से भी कुछ न कुछ छुपाता है और मित्र मित्र से भी कुछ न कुछ छुपाता है। एक संत है जो अपना करोड़ों जन्मों का धन पाया है मेहनत करके और करोड़ों अरबों रुपया खर्चे, फिर भी वो आत्मधन नहीं मिल सकता। ऐसे धन को निखालसता से खुले आम हर व्यक्ति को अपना दिल खोलकर धर देता है। ये संत का स्वभाव होता है, दूसरे का है। शेर के डांट में आया हुआ शिकार तो शायद कहीं फैल हो सकता है, लेकिन संत के हृदय में आया हुआ साधक फैल नहीं हो सकता। देर सवेर सब
ज्योतिषामपितज्योति तमसा परमुच्यते
ज्ञानं ज्ञानगम्यं गेयं
भगवान कहते हैं कि वो ज्योतियों की भी ज्योति है।
हाजरा हजूर जागंदी ज्योत नानक जी ने कहा, और कृष्ण कहते ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञे अज्ञान गम्यम। हृदय संविष्टम, सबके हृदय में संविष्ट है, तो उस भगवान को दूर कब तक खोजोगे? उस भगवान को मरने के बाद कब तक सोचोगे? जीते जी वो ज्योतियों का ज्योति है। सूरज एक ज्योति है, चंद्रमा एक ज्योति है, अग्नि एक ज्योति है। इन सब ज्योतियों को देखने के लिए नेत्र की ज्योति चाहिए। नेत्र ठीक देखते कि नहीं देखते इसमें मन की ज्योति चाहिए। मन का निर्णय ठीक है कि नहीं ठीक है इसमें बुद्धि की ज्योति चाहिए। लेकिन बुद्धि हमारी सही है कि नहीं है इसको देखने वाला मैं, वह आत्मा मैं, वो ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से परे है। यार आज तो यार चेटी चंडा है, पर ए छोकरा पुरसु चंद जो दर्शन न थो थे दादा जो जो काका ओ वो देखो काका ओ सामने फ्लैट है न, उसके इसके दाएं तरफ वो पेड़ है न, पेड़ की डाली के इधर को वो काली बादली है, ओ ओ ओ दिस ओ साइली ककरे ओ काका डिठे। हा चंद डिठो, चांद देखा लेकिन कौन से चांद से देखा? आंख से देखा नहीं, आंख को ठीक से नहीं दिख रहा था, मन की एकाग्रता हुई, बुद्धि में थोड़ी सूक्ष्मता हुई और तुम्हारा मैं उसमें जुड़ा। चांद ठीक देखा नहीं दिखा, अंधेरा है बादली का प्रभाव, चांद नहीं दिखा, न देखने को भी तू देख रहा है और देखने को भी तू देख रहा है। तमसा परम उच्चते, तू अंधकार से परे है और ज्ञान स्वरूप है। सो साहेब सद सदा हजूरे अंधा जानत ताको दूरे। मरेंगे फिर किसी लोक में जाएंगे, भले जाओ मना नहीं है, लेकिन सारे लोक इसी लोकेश्वर से दिखेंगे। ये स्वर्ग है कि नहीं है ये भी तुम्हारे को इस ज्ञान स्वरूप आत्मा से दिखेगा। ये भगवान है कि नहीं, भगवान आ गए उसको देखने वाला आत्म भगवान चाहिए। ये संत हैं पहुंचे हुए कि नहीं पहुंचे हुए उसको देखने वाला भी तुम्हारा पहुंचा हुआ आत्मा तो चाहिए भाई। मेहनत की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी है। पैसों की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी है। सुख की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी है। जब तक ब्रह्म ज्ञान की कमी रहेगी तब तक चाहे समाज में कितने ही आविष्कार हो जाएं, कितनी ही सुविधाएं आ जाए, फिर भी आदमी तनाव में जिएगा, अशांत जिएगा, दुख में जिएगा। राजा भरत राज वैभव का सुख भोग भोग कर आखिर इस नतीजे पे आए कि दुनिया की कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, अंत में जीव को शांति या परम सुख पाने के लिए तो अंतर्मुख होना ही पड़ेगा, किसी फकीर की शरण जाना ही पड़ेगा। जय राम जी बोलना पड़ेगा। राजा भरत राजपाट छोड़कर फकीरी वेश धारण करके गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बांधकर ध्यान भजन करते थे। गुरु की प्रेरणा के अनुसार संध्या तर्पण आदि स्वच्छ वातावरण में रहते थे। जहां इंद्रियों के भोग और आकर्षण बहुत है, वहां ध्यान भजन में प्रगति करने में बहुत मेहनत होती है, लेकिन जहां वातावरण ध्यान भजन का होता है, वहां आराम से आदमी का ध्यान भजन उप होता है। ध्यान भजन करते करते राजा भरत, जो भगवान के रास्ते चलता है उसमें दया, क्षमा, करुणा, सेवा, ये सद्गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। एक समय की बात है, राजा भरत गंडकी नदी में स्नान करते समय सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। सूर्य को अर्घ्य देने से सौर्य केंद्र का थोड़ा विकास होता है, आरोग्यता और बुद्धि शक्ति में मदद मिलती है। बच्चों को याद शक्ति बढ़ाने के लिए भामरिक प्राणायाम कराने से उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। कानों में उंगली ऐसे डाले कि ज़्यादा दबाव ना हो और बाहर का आवाज़ ना आए, ऐसे दोनों उंगली डाल दे, गहरा श्वास ले और फिर नाक से ओमकार का गुंजन करे। इस प्रकार बुद्धि शक्ति का विकास होता है। लेकिन भरत राजा बुद्धि शक्ति के विकास के साथ साथ दया का भी तो विकास कर चुके थे, सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। इतने में गर्भवती हिरणी नदी में पानी पीने को आई और शेर ने धाड़ मारी तो डर के मारे हिरणी ने जंप मारा अगले किनारे। डर होने के कारण उसका बच्चा नदी में ही गिर पड़ा और वो नदी के उस किनारे गिर पड़ी और मर गई। भरत राजा को दया ही कि इसकी मां तो मर गई, इस नन्हे मुन्ने बच्चे का और कोई नहीं, उसको संभाल लिया राजा ने। दया करना अच्छा है, लेकिन दया के साथ सावधानी नहीं होती तो दया डाकण बन जाती। जयराम जी की। राजा भरत उस हिरण को लाए, श्रीमद् भागवत की कथा है। कोमल कोमल घास खिलाने लगे, उसकी सार संभाल करने लगे। हिरण को मानो माता पिता मिल गया भरत, और भरत को मानो नन्ना मुन्ना निर्दोष बालक मिल गया। अब उसकी सार संभाल लेते लेते भरत ध्यान भूल गए। उसकी सार संभाल और उसके साथ अड़खिलियां करते करते भरत को जरा मजा आने लगा, लेकिन मजा बाहर के साधन का था। जयराम जी की। जैसे किसी को डिस्को में उसमें मजा आता है और बंद जाता है, लेकिन आत्मा का जो मजा आता है वो उतर जाता है, छूट जाता है बंधनों से। भरतरी को आसक्ति ने बांध लिया, बेचारा हिरण, मैं नहीं होता तो इसका क्या होता। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। इस बेचारे की माँ भी तो मैं हूँ, बाप भी तो मैं हूँ। भरत संध्या करते, ध्यान करते, लेकिन सोचते कहीं इसको कुत्ता न फाड़ दे, कहीं जंगली जानवर न उठा ले जाए, ध्यान उधर खिंच गया। दया करी, हिरण को लाए, कोई घाटा नहीं, लेकिन ध्यान जो जहां देना चाहिए ध्यान वहां नहीं दिया, और संसार तो चलता रहता है, उधर ही ध्यान लगा दिया। भरतरी की आयुष्य पूरी हुई, लेकिन आयुष्य पूरी हुई चिंतन उस हिरण का हुआ। हिरण के चिंतन चिंतन में वह भरत राजा दूसरे जन्म में हिरण हुआ। किया हुआ ध्यान भजन व्यर्थ नहीं जाता है, हिरण के शरीर में उसको स्मृति बनी रही कि कि थोड़ी सी असावधानी की मोह किया तो मुझे हिरण बनना पड़ा है, अब मैं सावधान रहूंगा। एकादशी के दिन वो पत्ते नहीं खाता है, उपवास करता है, एकदम दूसरे हिरणों से अलग सा रहता है। उसकी आयुष्य पूरी हो गई, फिर किसी ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। देवयोग से उन ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम भरत रख दिया, लेकिन उसको अगले जन्म के राजा होने की सुध थी कि राजपाट छोड़ना तो आसान है, आसक्ति छोड़ना कठिन है। अब मैं मिलजुल कर यारी दोस्तारी बढ़ाकर अगर कहीं आसक्त हो गया तो फिर फंस मरूंगा। एक बार हिरण में आसक्ति होने से हिरण का जन्म मिला, तो अभी यारों में आसक्ति होने से कहीं दूसरे जन्म में यार की मिसिस न बनूं, यार का बेटा न बन जाऊं, यार का पोता न बनना पड़े। इसलिए वो भरत, ब्राह्मण का पुत्र भरत, जड़ जैसा रहने लगा। माता पिता ने देखा कि कुछ बोलता ही नहीं, अंदर से बड़ा सावधान था, बाहर से जड़ जैसा। माता पिता ने उसको जड़ जड़ कहते उसका नाम जड़ भरतरी पड़ गया, राजा भरत, फिर हिरण, फिर जड़ भरत। माँ बाप ने कहा अब तू हमारे किसी काम का नहीं, तो जंगल चल दिया। गुरु का उपदेश मिला था, वो संस्कार पड़े थे, आत्म अनुसंधान करने लगा। श्वास अंदर जाए सो बाहर आए हम, जिसकी शक्ति से आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ चखती है, वो मैं हूं। आंख ठीक देखती कि नहीं देखती उसको देखने वाला मैं हूं। मन को दुख होता है कि सुख होता है उसको देखने वाला मैं हूं। सो हम। राजा भरत, हिरण भरत, अब जड़ भरत। लेकिन इस समय वो सजग है, जिस हिरण को पाल के पोसते पोसते मर गए थे, उस हिरण को तो बहुत सारे जन्म लेने थे, लेकिन साधु का स्पर्श मिला, साधु उसकी भलाई का चिंतन करता था, वो हिरण मरकर दूसरे जन्म में रहुगण राजा हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे उसको जन्म लेने चाहिए थे, हिरण में से सीधा राजा बनना संभव बहुत कम होता है। हिरण बना, फिर गाय बने, फिर शूद्र जन्म हो, फिर कई जन्मों के बाद मनुष्य हो और मनुष्यों में दान पुण्य करे, बाद में कहीं राजा बने। लेकिन महापुरुष का सानिध्य, महापुरुष के हाथ से दिया हुआ रज का घास स्पर्श वाइब्रेशन उसके सारे कलमश काट चुका था। वो जो हिरण था, जो माँ छलांग मारकर गंडकी नदी में अपने गर्भ को गिरा दी थी माँ ने, वो अनाथ जिसकी हिरण भी मां नहीं रही, ऐसा अनाथ हिरण साधु के संग से सनाथ बना है, लाखों लोगों का स्वामी बना है, रहुगण राजा। रहुगण राजा को भरत, जब हिरण था रहुगण, तब भरत का संग हुआ तो संत के संग की एक अंदर में जो आभा थी, लालच थी, वो रहुगण राजा बनने पर भी उसे संतों के संग का आकर्षण बना रहा। आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिता में आता है कि मनुष्य पर अपने माँ बाप के, अपने दादा दादी के, अपने नाना नानी के भी संस्कार पड़ते हैं, और जिसका ज्यादा दिव्य संग स्पर्श है उसका भी संस्कार पड़ता है जीव पर। तो ज्यादा से ज्यादा माता पिता भी वो भरत थे और साधु संत स्वयं थे, तो उस हिरण पर जो संस्कार पड़े, उस संस्कार के प्रभाव से वो रहुगण राजा हुआ, और रहुगण राजा साधु संग में बड़ी प्रीति करता था। रहुगण राजा राज वैभव भोगते हुए भी अंदर से उसकी एक खटक रहती थी, कमी रहती थी कि परम शांति इन चीजों से नहीं मिलेगी। कितना भी खिलाया शरीर को, कितना भी घुमाया, कितना भी वाहवाही किया, अंत में शरीर दफना दिया जाएगा। कुटुंबी शमशान में ले जाएंगे, अग्नि दान दे देंगे, उसके पहले कोई संत मिल जाए और मेरे को अपने अनुभव का दान दे दे तो कितना अच्छा होगा। इस प्रकार उसके अंदर में ये लगन लगी रहती थी। महाराज, महात्माओं का संग निर्मल होता है, दुनिया का व्यवहार जो चलता है वो कूटनीति से चलता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पूरा का पूरा हाल किसी दूसरे साथी को बता दे। पत्नी होगी तो कुछ न कुछ पति से छुपा कर रखेगी, पति होगा तो कुछ न कुछ पत्नी से छुपा कर रखेगा, चाहे फिर बैंक बैलेंस हो चाहे और किसी की दोस्ती की बात हो। भाई भाई से भी कुछ न कुछ छुपाता है और मित्र मित्र से भी कुछ न कुछ छुपाता है। एक संत है जो अपना करोड़ों जन्मों का धन पाया है मेहनत करके और करोड़ों अरबों रुपया खर्चे, फिर भी वो आत्मधन नहीं मिल सकता। ऐसे धन को निखालस्ते निखालस्ता से खुले आम हर व्यक्ति को अपना दिल खोलकर धर देता है। ये संत का स्वभाव होता है, दूसरे का नहीं। ये संत का स्वभाव अमोघ है, संत का सानिध्य अमोघ है। नानक जी ने ठीक कहा, जे को जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जे को अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। संसार में कोई कितना भी प्रेम दिखाए लेकिन महाराज पूरा हृदय खोलकर तो नहीं रख सकता है, और हृदय खोलेगा तो अज्ञान वाला हृदय होगा। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है उसका ज्ञान वाला हृदय तो खुले आम लोगों के आगे खुलता रहता है। ऐसे महापुरुषों का संग दुर्लभ हो, महत्पुरुष संग अमोघश्च, वो अमोघ होता है। शेर के डाँठ में आया हुआ शिकार तो शायद कहीं फैल हो सकता है, लेकिन संत के हृदय में आया हुआ साधक फैल नहीं हो सकता। देर सबेर सफल हिरण इतना सफल हो सकता है तो फिर सिंधी साईं सफल हो जाए तो क्या बड़ी बात है। बरी यार चौ नारायण 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 बोलो ना, चौदह नारायण 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 नारायण। रहुगण राजा राजपाट भोगते हुए भी अंदर की कोई कमी महसूस कर रहे थे। मूर्ख आदमी वह है जिसको ये संसार की चीजें लुभा दे और बोलता है आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव नो प्रॉब्लम। अरे बेवकूफ के सरदार, मृत्यु तेरे माथे पर नाच रही है और यू हैव नो प्रॉब्लम। कब मृत्यु का झटका तेरा सर्वस्व छीन ले? बोलता है नो प्रॉब्लम, आई हैव टू मिल्स, टू फैक्ट्री, आई हैव थ्री बॉयज, टू बेबीज, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी लक्की। अरे लक्की क्या, इन चीजों को पाकर तू लक्की समझता है? ये कब चीजें छूट जाए और चीजों का गर्व करने वाला शरीर छूट जाए कोई पता नहीं यार। तू लक्की तो तब है जब महापुरुष के अनुभव को अपना अनुभव बना दे, ब्रह्मज्ञानी के गुरु के ज्ञान को अपना ज्ञान बना ले, रब का हृदय में साक्षात्कार कर ले, तू तो लक्की और तेरी निगाहें पड़े वे भी लक्की हो जाएंगे यार। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ऐसा तू बने तब तू लक्की, नहीं तो बेवकूफी से लक्की मान ले तो मान ले, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे बच्चा मुन्ना कहता है चॉकलेट मिल गया, लॉलीपॉप मिल गया, अठन्नी मिल गई, अठन्नी मिलती थी आज 5 रुपए मिल गए, आई एम वेरी लक्की, आई एम वेरी लक्की। ठीक है, लेकिन उसका वेरी लक्कीपना जब बड़ा होता है तो पता चलता कि बेवकूफी थी। ऐसे ही जब ब्रह्मज्ञान की दुनिया में आते तब पता चलता कि ये भी बेवकूफी। राजा रहुगण को अपनी बेवकूफी का पता चला। बेवकूफ कौन है कि जिसको बेवकूफी का पता न चले? जयराम जी की। एक बेवकूफ था, उसकी औरत भाग गई, औरत को खोजते खोजते किसी गांव में पहुंचा। सुबह 5 बजे भागा था, 7 बजे किसी पड़ोस के गांव में पहुंचा, मेरी औरत यहां तो नहीं आई। उसको बाथरूम करना था, सीटी मारना था, हिक करना, सलवार ऊंची करके पनघट के सामने पिचकारी मारने लगा जहां माइयां पानी भरती थी। एक बूढ़ी माई ने कहा कि ए भैया तेरा नाम क्या है? बोले बेवकूफ। बोले इस गाँव में तेरे को हम पहली बार देखती हूँ और ऐसे सलवार ऊपर करके पिचकारी मार रहा है। पहली जो टसलवार माई ना, नाड़े वाली सलवार जैसे पंजाबी लोग पहनते ना सलवार, सलवार ऐसे वो बेवकूफ पहना। बोले सलवार ऊंची करके तू बाथरूम कर रहा है, खड़े खड़े महिलाएं पानी भर रही है, तेरा नाम क्या? बोले बेवकूफ। तो क्यों आया इस गांव में? बोले मेरी औरत को खोजने को आया। औरत का नाम क्या है? बोले औरत का नाम है फजेती। माई खूब हंसी, अरे बेवकूफ तू फजेती को खोजने आया है? तू तो जहां जाएगा वहां तेरी फजेती होगी, तेरा व्यवहार ही ऐसा है कि तेरी फजेती हो जाएगी, फजेती को खोजने क्यों आया तू? तो जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक मन इन चीजों को पाकर अपने को सुखी मानता, ये उसकी बेवकूफी है और उसकी फजेती होती रहती है। मृत्यु आता है, झटका मार देता है, सब यहां पड़ा रह जाता है, रवाना हो गया, ये फजेती नहीं तो क्या। फिर दूसरे जन्म में पिता की शिशना से पसार हुआ, माता के गर्भ में घुसा, मासिक धर्म का खून पिया और अंदर पड़ा रहा, 9 महीने पचता रहा गर्भाग्नि में, ये फजेती नहीं तो क्या है। जब तक बेवकूफी रहेगी तब तक फजेती तो साथ आएगी, और बेवकूफी सत्संग से मिटती है भाई, कॉलेज के किताबों से बेवकूफी नहीं मिटती, टाइटल और पदों से बेवकूफी नहीं मिटती है, आत्म पद से बेवकूफी मिटती। रहुगण राजा को हुआ कि मैं बेवकूफी मिटाने के लिए महात्माओं के शरण जाऊं, सत्पुरुषों का संग अमोघ होता है, वो महापुरुषों का संग पसंद करते थे। कपिल देव उस समय महापुरुष, प्रसिद्ध महापुरुष थे, उनके आश्रम में जाने के लिए राजा रहुगण डोली में बैठकर कपिल देव के चरणों में सत्संग करने के लिए जा रहे थे। 4 कहार डोली उठाकर चल रहे थे, उसमें से 1 कहार डोली उठाने वाला बीमार पड़ गया। रहुगण राजा ने कहा जाओ ढूंढ लाओ कोई आदमी मिले तो वही जड़ भरत ब्राह्मण अट्टे कट्टे सोहम की मस्ती में जंगलों में विचरण करने वाले मिल गए। पकड़ के लाए कहार, जड़ भरत को जोत दिया डोली उठाने में। अब वो महात्मा जड़ भरत जो जिस हिरण को पाला पोषा था वो हिरण रहुगण राजा बना बैठा है, और ये जड़ भरत कहारों के साथ जुड़ गए हैं। देखो कर्म की गति कैसे ऊपर और नीचे शरीर का संबंध बना देती है, लेकिन समझ अभी भी उनकी ऊंची है। तीन कहार तो ठीक चलते थे, लेकिन ये चौथे जो जड़ भरत थे ब्रह्मज्ञानी कहार, उन्होंने कभी डोली उठाई नहीं थी और डोली के चाल के साथ चलने की कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, वो अपने ढंग से चलते थे। और कहीं कीड़ी मकोड़े यहां कोई जीव जंतु का भास होता तो वहां उनको बचाने के लिए जरा जंप मार देते, और जंप मार देते तो डोली में बैठा हुआ रहुगण का सिर टकराता। रहुगण डांटने लगे कहारों को, कहारों को डांटते डांटते रहुगण गुस्से में हो गए। तब कहारों ने कहा कि राजन हमारे कसूर से आपको चोट नहीं लगती, ये जो चौथा आया है ना नया वो जंप मारता है, उसको चलना नहीं आता। रहुगण राजा ने धमकाया, मैं नगर का सम्राट हूं, मेरी सेवा करना नगरवासियों का कर्तव्य है, तू मेरे जंगलों में रहता है पागल, तुझे आराम से ठीक ढंग से चाल चलनी चाहिए। लेकिन जड़ भरत ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर कहीं कीड़ी मकोड़ा का बिल आया कूदा, फिर रहुगण बबड़े। जड़ भरत को दया आई कि मेरे कंधे पे बैठा है फिर नरक में जाए तो अच्छा नहीं, देखो दयालु संत कितने उदार होते। रहुगण की मति में कुछ प्रकाश हो ऐसा सोचकर जड़ भरत बोले कि तुम बोलते हो मैं मार डालूंगा, मैं नीचे उतरूंगा खाल खींच दूंगा, मार दूंगा। राजन तुम किसको मारोगे? एक मिट्टी का पुतला, उसमें है डोली का डंडा, उस डोली में बैठा हुआ मिट्टी का पुतला मिट्टी के पुतले को मारेगा, इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा राजन? राजा ने देखा कि ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी बोल सके ऐसी बात है, शास्त्र सम्मत अनुभव युक्त वचन है। जो चमड़ा उतारने की धमकी दे रहा था, हिंटर मारने की धमकी दे रहा था, वह राजा रहुगण जंप मार के डोली से नीचे उतरा, प्रणाम किया, भो भगवन हे प्रभु मुझ बालक की गलती माफ करना, आप कोई ब्रह्मज्ञानी संत मालूम होते हैं, मैं तो कपिल देव के आश्रम में शांति पाने के लिए जा रहा था, लेकिन आप तो चलते फिरते शांति के पावर हाउस मालूम होते हैं, मैंने इतना डांटा धमकाया, फिर भी आपने करुणा करके मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। महाराज आप अपना परिचय दीजिए। जड़ भरत बोले, मेरा परिचय इन आंखों से नहीं दिया जाएगा, मेरा परिचय इस वाणी से नहीं है, मेरा परिचय जो मेरे को जानता है वही मेरा परिचय पा सकता है। सो जाने जासुदेहु जना ही जानत तुम ही हो जाए। राजन इस मिट्टी के पुतले को मैं मानना और नश्वर राज्य को मेरा मानना और फिर बुद्धि में अहंकार भर देना, ये मेरा मैं कौन हूं इसका तो पता ही नहीं। रघुगण राजा को पक्का अनुभव हुआ कि ये कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है। रघुगण राजा ने अर्घ्यपाद से पूजन किया और सत्संग के लिए प्रार्थना की, याचना की कि हे महापुरुष, आप जब बोलते हैं तो ब्रह्म को छूकर, परमात्मा को तो हमने नहीं देखा लेकिन परमात्मा का अनुभव करने वाले ब्रह्मज्ञानियों को तो हम देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। महाराज इस जन्मों के भटके हुए अज्ञानी अनाथ रघुगण को आप सनाथ बनाइए, मैं आपका चरणों का दास हूं। जड़ भरत ने कहा कि राजन जब तक महापुरुष की चरण रज में ये जीव सच्ची श्रद्धा भक्ति से स्नान नहीं करता, अपना मैं महापुरुष की मैं के साथ नहीं मिलाता, तब तक माया का बंधन नहीं कटता है। माया की चीजें मिलने से वो अपने को बड़ा मानने लगता है, धन तो बाहर पड़ा रह जाता है, समझता कि मैं धनवान, मकान तो बाहर पड़ा है मैं मकान वाला, कुर्सी तो बाहर खड़ी है मैं कुर्सी वाला, ये मैं कुर्सी वाला में, मकान वाला में, बेटे वाला में, विद्या वाला, ये इसकी माया है। हकीकत में ये जीवात्मा परमात्मा वाला है और परमात्मा जीवात्मा वाला है, इसका उसको पता नहीं। राजन शरीर भी नश्वर है और संसार की चीजें भी नश्वर है, बड़े बड़े प्रलय हो गए, बड़े बड़े युद्ध हो गए, बड़े बड़े आतंक हो गए, फिर से नई सृष्टि होती, फिर से तूफान आता है, आंधी तूफान चलता है, बड़ा खतरनाक लगता है लेकिन समय पाकर आंधी तूफान शांत हो जाता है और हवामान में शुद्धि आ जाती है। ऐसे ही समाज में कई बार दुष्ट लोगों के द्वारा कुछ का कुछ हो जाता है, राजा और प्रजा भयभीत और चिंतित हो जाती, फिर समय पाकर सुख शांति आ जाता है। ऐसा समाज में उतार चढ़ाव सतत होता रहता है जैसे सागरों में तरंग पैदा होकर उछल कूद कर। हे राजन कोई तरंग बना और कोई तरंग मिटा लेकिन पानी तो वही का वही, ऐसे कोई शरीर बना है और कोई शरीर मिटा लेकिन आत्मा वही का वही, उस आत्मा पर ध्यान नहीं तभी तक भय रहता है, तभी तक चिंता रहती है, तभी तक शोक रहता है। जीव अगर अपने को आत्मा मानने का अभ्यास करे, अपने को सोहम मानने का अभ्यास करे, संसार को मिथ्या और स्वप्ने जैसा बदलता हुआ मानने का अभ्यास करे तो जीव आत्मा के बहुत सारे कष्ट इस समझ मात्र से स्वाह हो जाएंगे। राजन तुम शांति पाने के लिए जा रहे हो लेकिन मैं राजा रघुगण हूं और ये कहार है, रघुगण कौन है बताओ और कहार कौन है? अभी युद्ध हो जाए और तुम्हारा राज्य चला जाए और मैं राजा बन जाऊं तो तुम कहार बन जाओगे, मैं राजा बन जाऊंगा, ये तो मन की मान्यता है। वास्तविक में मैं कौन हूं और तुम मैं बोलते हो तो तुम्हारा मैं, मेरा मैं जहां से उठता है वह ज्योति स्वरूप मैं का साक्षात्कार कर ले तभी सच्चा सम्राट हो जाएगा, अन्यथा कल्पना का राजा रहेगा। राजन ये राज्य तेरा नहीं, राज्य पुण्यों का है। तू हिरण के शरीर में था और किसी महात्मा का स्पर्श मिला, तेरे को महात्मा का सानिध्य मिला। हिरणों को तो सैकड़ों जन्म लेने थे, बाद में मनुष्य होने वाला था, अच्छा संग मिल गया इसलिए अच्छी वृत्ति भी हुई, तुझे महात्माओं के पास जाने की इच्छा तो रही लेकिन साथ साथ में राजन राज्य का अहम लेकर जाएगा महापुरुषों के पास तो तेरा पूर्ण कल्याण नहीं होगा। बालकवत जाना चाहिए, होमी रोग छोड़कर संत के द्वार पर जाना चाहिए। एक एक कदम सच्चे संत के द्वार पर दर्शन के लिए चलता है आदमी तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जिन्होंने उस आत्मा की हरि की कथा नहीं सुनी अपने कानों से, उनके कान सांप के बिल जैसे हैं। जिन्होंने अपनी जीवा से हरि नाम नहीं लिया, उनकी जीभ मेढक के जीभ जैसी। हे रहुगण, तू शांति पाना चाहता है और तू सच्चा राज्य पाना चाहता है, तो जिन्होंने सच्चा राज्य पाया है ऐसे महापुरुषों का संग कर। राजन, सौ काम छोड़कर मनुष्य को टाइम से भोजन कर लेना चाहिए, हजार काम छोड़कर समय सर स्नान कर लेना चाहिए, लाख काम छोड़कर सत्कर्म कर लेना चाहिए, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान कर लेना चाहिए। जीव का इसी में कल्याण है। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान हरि का ध्यान कर लेना चाहिए, लेकिन राजन, इस जीव को ऐसी माया लगती है कि जो राज्य पहले था नहीं, जो घर पहले था नहीं बाद में रहेगा नहीं, जो शरीर पहले था नहीं बाद में नहीं रहेगा, उस शरीर को पालने पोषने के लिए और उन मकानों और संपत्ति को संभालने के लिए ऐसा तो अंधी माया में दौड़ता है, ऐसा अंधा होके दौड़ता है कि आंख होते हुए भी, अंदर की आंख होते हुए भी ये जीव बेचारा अंधा रह जाता है, क्योंकि सत्संग के द्वारा आत्मशलाकार लगी नहीं, इसलिए जीव आत्मा बेचारा सब कुछ करते हुए भी दुखी का दुखी रह जाता है। राजन, दुख भगवान ने नहीं बनाया, दुख माया ने नहीं बनाया, दुख बेवकूफी से बनता है और बेवकूफी मिटती है ज्ञान से, और कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास ने भी ठीक कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना बिचारे ज्ञान। ज्ञान का विचार करना पड़ेगा। जप करो अच्छा है, जप करते करते कुछ मन पवित्र होगा, लेकिन ज्ञान संयुक्त जप नहीं होगा तो जप में मन भी तो नहीं लगेगा। जप में जितने अक्षर कम हो उतना जप का फायदा ज्यादा हो। जैसे इंजन में जितने डब्बे कम लगे हो अथवा ट्रक में जितना लोड कम हो उतना आराम से चलती है गाड़ी। फियाट गाड़ी में 12 आदमी बिठाओ तो उसका मजा अलग है, और 4 आदमी बैठकर ड्राइविंग करते तो उसका मजा अलग है। ऑटो रिक्शा में 2 आदमी बैठते और कहीं कहीं 12-15 भी बिठाते देहातों में, तो फिर उसकी अपनी होती है चाल। ऐसे ही मंत्र में जितने अक्षर कम हो और मंत्र जपने में जितना आसान हो और श्वासोश्वास में मंत्र चलता रहे, ऐसी कला जो लोग जानते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए, और मरने के बाद मुक्ति नहीं जीते जी आनंद और मुक्ति का अनुभव कराए, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में जीव को जाना चाहिए। राजन, ये जीव लकीर का फकीर हो जाता है। करोड़ों लोग तो पेट पालू कुत्ते जैसे जीते हैं, लेकिन कुछ कुछ लाखों लोग ऐसे भी हैं जो गुरु करते हैं, लेकिन गुरु करते हैं तो गुरु का नाम लिया मंत्र लिया और कोलू की बैल के नाई वहीं घूमते रहते हैं, उस चक्राव से बाहर नहीं निकलते। उनमें कोई कोई विरले होते हैं चक्राव से बाहर निकालने वाले, महापुरुषों को खोजकर आत्मा अनात्मा का विचार करके और सीधी साधना करके आत्मपद को पाकर राजन वे लोग भी मुक्त हो जाते हैं और कुटुंब का भी कल्याण कर लेते हैं। रहुगण राजा को जड़ भरत ने जब उपदेश दिया जड़भरत ने कहा कि ये शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं, और मौत हर रोज नजीक आ रही है। इस जीव का कर्तव्य है कि धर्म का संग्रह कर ले, साधना के खजाने का संग्रह कर ले। अनित्याणि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं। 1923 में अमेरिका में 8 बड़े बड़े धनाढ्य लोगों की सर्वे हुई, और फिर 1948 में उन 8 लोगों की जांच पड़ताल की गई, जो कैश पेमेंट में कैश धन सबसे अधिक रखता था उस सेठ की जांच की 1948 में 25 साल के बाद। वो सेठ लकवा की बीमारी से चिंता चिंता में बुरी तरह मर गया। जिसके हाथ में मार्केट था पूरा सट्टा बाजार का, उसने ऐसा सट्टा खेला कि दिवालिया हो गया, भीख मांग रहा है द्वार द्वार पर। जिसके हाथ में गेहूं और बटाके का मार्केट उंगली के इशारे से नाचता था, वो धनाढ्य सेठ पागल हो गया, पागलखाने में पड़ा है। जो टेलीफोन और लाइट का मालिक था, अरबों खरबों की संपत्ति का जो धनी था, वो अरब खरब पति आदमी हार्ट अटैक की बीमारी से मर गया। वैभव नैव शाश्वत, शरीर अनित्य, वैभव शाश्वत नहीं, और रोज मौत के तरफ आदमी आगे बढ़ रहा है। कर्तव्य है कि आत्म ध्यान का, आत्मज्ञान का खजाना पाले। अनित्याणि शरीराणि, अनित्याणि शरीराणि, अनित्याणि शरीराणि, अनित्याणि शरीराणि, नैव शाश्वतः विभवो नैव
शाश्वतः,
नित्य सन्निहितो मृत्यु, नित्य सन्निहितो मृत्यु, कर्तव्यो धर्म संग्रह, कर्तव्यो धर्म संग्रह। हमारा कर्तव्य के हम आत्मधर्म का, आत्मज्ञान का, आत्मध्यान का धन संग्रह कर ले। इस धन का तो कोई पता नहीं, इस धन को तो प्रारब्ध से जितना आना है उतना आएगा, जितना जाना है उतना जाएगा, लेकिन आत्मधन के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करोड़ काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का ज्ञान पा लेना चाहिए। रघुगण राजा ने तो भरतरी का उपदेश पाकर अपना कल्याण कर लिया।